एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब और शख्सियत पर बात करने वाले हैं, सैम वॉल्टन और उनके आत्मकथा मेड इन अमेरिका।
हाँ नमस्कार,
ये किताब असल में सिर्फ वॉलमार्ट की कहानी नहीं है।
सही कहा, ये उस सोच, उन उसूलों की कहानी है जिनसे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी खड़ी हुई।
बिल्कुल, और सैम वॉल्टन मतलब 1918 से 1992 तक वो कोई किताबी ज्ञान वाले बिजनेस गुरु नहीं थे।
हाँ वो तो जमीनी आदमी थे।
एकदम, महामंदी के दौर में पले बड़े तो मेहनत और पैसे बचाने की कीमत उन्हें बचपन से पता थी।
और उनकी कहानी आज भी मुझे लगता है बहुत मायने रखती है।
बहुत ज्यादा, क्योंकि ये दिखाती है कि असाधारण सफलता के लिए हमेशा कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होता। बुनियादी बातें जैसे ग्राहक पर पूरा ध्यान देना, कर्मचारियों को अपना समझना और हाँ, खर्चा कम रखना, इन पर टिके रहना भी कमाल कर सकता है।
और उन्होंने ये सब खुद करके सीखा है ना, कोई मैनेजमेंट स्कूल से नहीं।
बिल्कुल, खुद किया, सीखा और फिर अपनी किताब में खुलकर बताया भी।
तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनके शुरुआती साल कैसे थे, क्या चीजें थीं जिन्होंने उन्हें वो सैम वॉल्टन बनाया जिन्हें हम जानते हैं?
हाँ, तो जैसा मैंने कहा, महामंदी का दौर था। ओक्लाहोमा में जन्म, मिसूरी में परवरिश, घर में पैसे की तंगी थी।
अच्छा,
तो बहुत छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। कहते हैं वो गाय का दूध निकालते थे, बेचते थे, अखबार भी बांटते थे।
अरे वाह, मतलब बिजनेस का पहला पार्ट वहीं से शुरू हो गया
एक तरह से। हाँ, ग्राहक से कैसे बात करनी है, नफा नुकसान क्या होता है। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी गए, जेसी पेनी में नौकरी भी की।
वहां रिटेल सीखा होगा।
हाँ, रिटेल के बेसिक सीखे। तो ये सब अनुभव, मतलब मेहनत और बचत की आदत डाल रहे थे उनमें।
तो ये मिथ्याहिता, ये सादगी तो शुरू से थी, लेकिन बिजनेस में पहला बड़ा कदम कब और कैसे उठाया?
वो उठाया उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के बाद, सेना में सर्विस की और फिर 1945 में अपनी बचत और कुछ उधार लेकर
हाँ
न्यूपोर्ट आर्कनसास में एक बेन फ्रैंकलिन स्टोर की फ्रेंचाइजी ले ली।
अच्छा, बेन फ्रैंकलिन, वो वैरायटी स्टोर होते थे ना?
हाँ वही, और ये स्टोर उनके लिए एक लैब जैसा बन गया। उन्होंने खूब प्रयोग किए,
जैसे कि
दुकान ज्यादा देर तक खोलना, सस्ता, अलग अलग तरह का सामान रखना, पॉपकॉर्न मशीन लगा दी ग्राहकों को खींचने के लिए।
ये बढ़िया था।
और नतीजा, कुछ ही साल में वो स्टोर पूरे राज्य का सबसे सफल बेन फ्रैंकलिन स्टोर बन गया।
वाह, मतलब पहली कोशिश में ही छक्का मार दिया।
हाँ, सफलता तो मिली, पर यहीं एक बड़ा झटका भी लगा। एक ऐसा सबक मिला जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी।
ओह, क्या हुआ?
हुआ ये कि जिस बिल्डिंग में स्टोर था ना,
हाँ,
उसका जो लीज एग्रीमेंट था ना,
हाँ,
उसमें एक क्लॉज पर सैम ने ध्यान नहीं दिया था।
अच्छा,
तो जब 5 साल बाद लीज खत्म हुई, मकान मालिक ने देखा कि स्टोर तो भाई खूब चल रहा है, उसने लीज रिन्यू करने से मना कर दिया।
अरे,
और वो स्टोर अपने दामाद को दे दिया। सैम के हाथ से उनका बनाया हुआ सफल बिजनेस चला गया।
ये तो बहुत ही बुरा हुआ होगा, इतनी मेहनत पानी में चली गई एक तरह से।
बहुत बड़ा झटका था, महंगा सबक भी, पर इसने उन्हें दो बहुत जरूरी बातें सिखाई।
क्या?
पहली कि बिजनेस में हर छोटी डिटेल, खासकर कानूनी कागजात, उन पर ध्यान देना कितना जरूरी है, और दूसरी कि अपनी किस्मत अपने हाथ में रखने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का मालिक होना कितना अहम है।
ये बात तो है, दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है।
बिल्कुल, इस अनुभव ने उनकी आगे की सोच पर, उनकी रियल एस्टेट रणनीति पर बहुत गहरा असर डाला।
तो इस झटके के बाद क्या उन्होंने हार मान ली, या यहीं से वॉलमार्ट का आइडिया आया?
हार मानने वालों में से तो वो थे नहीं। इस झटके ने उन्हें और सावधान बना दिया। वो अपनी पत्नी हेलेन के साथ बेंटनविले, आर्कनसास चले गए।
बेंटनविल, ये तो आज वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर है।
हाँ, पर उस समय ये एक बहुत ही छोटा शांत सा कस्बा था। वहां उन्होंने वॉल्टन फाइव एंड डाइम नाम से अपना स्टोर खोला।
अच्छा, फिर से शुरुआत।
हाँ, और ये दौर उनके लिए सीखने का था। वो घंटों गाड़ी चलाकर दूसरे सफल रिटेलर्स के स्टोर देखने जाते थे, के मार्ट हो या कोई और।
अच्छा, दूसरों के स्टोर, क्या करते थे वहाँ?
वो स्टोर में घूमते थे, बारीकी से देखते थे सामान कैसे रखा है, डिस्प्ले कैसा है, कीमतें क्या हैं।
और नोट्स बनाते थे।
नोट्स,
हाँ,
बाकायदा नोट्स बनाते थे। वो खुद मानते थे कि उन्होंने बेशर्मी से अच्छे आइडियाज उधार लिए हैं।
ये दिलचस्प है, मतलब सीखने में कोई शर्म नहीं, चाहे कॉम्पिटिटर से ही क्यों ना सीखना पड़े।
बिल्कुल, उनका मानना था कि अच्छा आइडिया कहीं से भी आ सकता है और इसी दौरान उन्हें पक्का यकीन हो गया कि रिटेल का भविष्य डिस्काउंटिंग में है।
डिस्काउंटिंग मतलब कम दाम पर ज्यादा माल बेचना।
हाँ, कम मार्जिन रखो, ज्यादा बेचो। उन्होंने देखा कि शहरों में डिस्काउंट स्टोर चल रहे थे, तब उनके मन में वो सवाल आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
कौन सा सवाल?
सवाल था, अगर ये शहरों में चल सकता है तो छोटे कस्बों में क्यों नहीं।
सोचने वाली बात है। उस समय क्या सोचती इस बारे में?
उस समय सारे एक्सपर्ट्स यही कहते थे कि छोटे ग्रामीण इलाकों में इतने ग्राहक ही नहीं होते कि बड़े डिस्काउंट स्टोर चल सकें।
अच्छा, मतलब ये आम धारणा के बिल्कुल उलट था।
एकदम। यही वॉल्टन का वो कंट्रेरियन नजरिया, मतलब धारा के विपरीत सोचने की हिम्मत सामने आई। उन्होंने वो मौका देखा जिसे बड़े खिलाड़ी देख ही नहीं रहे थे या नजरअंदाज कर रहे थे।
और फिर?
और फिर 1962 में 44 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई बर्ड के साथ मिलकर पास के ही रॉजर्स अरकांसस में पहला वॉलमार्ट डिस्काउंट सिटी खोला।
वॉलमार्ट आखिरकार।
हाँ, स्टोर बहुत सिंपल था, कोई तामझाम नहीं, कम बजट में बना था, पर एक सिद्धांत पक्का था।
क्या?
जानी माने ब्रांड के उत्पाद सबसे कम संभव कीमत पर बेचना।
तो ये थी वॉलमार्ट की शुरुआत। एक साधारण स्टोर, एक बड़ा आइडिया, लेकिन एक स्टोर से दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनना, कि सफर कैसे तय हुआ? सिर्फ कम कीमत रखना ही तो काफी नहीं होता होगा, खासकर इतने बड़े स्केल पर।
नहीं, बिल्कुल काफी नहीं होता। शुरुआत धीमी थी, पर छोटे शहरों पर फोकस बना रहा। विस्तार तेजी से हुआ, लेकिन उनकी सफलता का असली राज सिर्फ नए स्टोर खोलना नहीं था।
तो फिर क्या था?
वो था जिसे कहते हैं ऑपरेशनल एक्सेलेंस।
ऑपरेशनल एक्सेलेंस मतलब?
मतलब अपने काम करने के हर तरीके को, पर्दे के पीछे के हर काम को लगातार बेहतर और ज्यादा कुशल बनाना, खर्च कम करना। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो उस समय के लिए बिल्कुल नए थे, क्रांतिकारी थे।
अच्छा?
जैसे कि पहला उनका हब एंड स्पोक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उन्होंने बड़े बड़े गोदाम, मतलब वेयरहाउस, ऐसी जगहों पर बनाए जहां से आसपास के कई स्टोर्स तक एक दिन की ड्राइव में सामान पहुंचाया जा सके।
इससे क्या फायदा हुआ?
इससे इन्वेंट्री रखने का खर्चा कम हुआ और सामान दुकानों तक बहुत तेजी से पहुंचने लगा। उनका अपना पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क था।
ओके, और?
दूसरा, खुद का ट्रक फ्लीट। सामान पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने खुद के ट्रक रखे। इससे डिलीवरी के टाइम और खर्चे दोनों पर उनका पूरा कंट्रोल आ गया, जबकि बाकी लोग बाहरी कंपनियों पर निर्भर थे।
ये भी स्मार्ट था। और तीसरा, आपने कहा था कुछ क्रांतिकारी किया।
हाँ, तीसरा और शायद सबसे अहम, वो था टेक्नोलॉजी का बहुत शुरुआती और समझदारी भरा इस्तेमाल।
टेक्नोलॉजी उस जमाने में?
हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर तो इस्तेमाल करना शुरू किया ही, लेकिन 80 के दशक में उन्होंने अपना खुद का निजी सैटेलाइट नेटवर्क लगा लिया।
क्या, 80 के दशक में अपना सैटेलाइट नेटवर्क रिटेल कंपनी के लिए? ये तो अविश्वसनीय लगता है।
हाँ, उस समय ये अभूतपूर्व था, किसी ने सोचा भी नहीं था।
इसका फायदा क्या हुआ, मतलब सैटेलाइट से क्या कर रहे थे वो?
फायदा जबरदस्त था। सोचिए, जब बाकी रिटेलर फोन पर या हफ्ते भर पुरानी रिपोर्ट्स पर काम कर रहे थे, वॉलमार्ट के पास हर स्टोर से रोज का, बल्कि लगभग रियल टाइम बिक्री का डेटा सीधे हेडक्वार्टर पहुंच रहा था। इससे वो मांग के हिसाब से इन्वेंट्री, स्टॉक, कीमतें, सब कुछ लगभग तुरंत एडजस्ट कर सकते थे।
कमाल है, मतलब एकदम सटीक जानकारी, तुरंत एक्शन।
बिल्कुल, इसे लागत कम हुई, सही सामान सही समय पर स्टोर में पहुंचा। ये उन्हें ऐसी बढ़त दे रहा था जिसका मुकाबला करना बाकियों के लिए नामुमकिन सा हो गया था।
समझ गया, मतलब बैक एंड इतना मजबूत कर लिया कि फ्रंट एंड पर कम कीमत देना और सही सामान रखना मुमकिन हो गया।
एग्जैक्टली। 1970 में वो कंपनी को पब्लिक ले गए ताकि ग्रोथ के लिए पैसा मिले।
जी।
लेकिन सैम वॉल्टन ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि शेयर बाजार का जो शॉर्ट टर्म दबाव होता है ना,
तिमाही नतीजों का प्रेशर,
हाँ, वो उनकी कंपनी के कल्चर को, जो ग्राहक और कर्मचारी पर फोकस करता था, उसे खराब ना कर दे। तो उनकी विरासत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बनना नहीं है,
बल्कि
ग्राहक को वैल्यू देना, ऑपरेशन में बेस्ट होना और एक अनोखी कॉरपोरेट संस्कृति बनाना, इस पर आधारित सफलता का एक मॉडल तैयार करना है।
ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन, लोगों और टेक्नोलॉजी को मिलाकर यह साम्राज्य खड़ा किया। पर अगर हमें सैम वॉल्टन के मूल दर्शन को समझना हो, उनके सोच के सार को, तो वो क्या था? वो कौन से सिद्धांत थे जिन पर यह सब टिका था?
हाँ, उनके दर्शन के केंद्र में कुछ बहुत ही सरल पर बेहद शक्तिशाली मूल्य थे। और सबसे बड़ी बात, वो इन मूल्यों को सिर्फ कहते नहीं थे, जीते थे।
जैसे?
पहला और सबसे बड़ा, ग्राहक ही बॉस है। ये उनका मंत्र था। उनकी मशहूर कहावत थी, यहाँ सिर्फ एक ही बॉस है, ग्राहक। कंपनी का हर फैसला इसी कसौटी पर परखा जाता था। इससे ग्राहक को क्या फायदा होगा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी रणनीति का कोर था।
ओके, और दूसरा?
अत्यधिक मितव्ययता, मतलब खर्चों पर पैनी नजर। उनका कहना था, अपने खर्चों को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर कंट्रोल करो।
सुना है उनके ऑफिस बहुत साधारण होते थे, वो खुद इकोनॉमी में सफर करते थे।
बिल्कुल, सालों तक अपनी पुरानी पिकअप ट्रक चलाई, सस्ते मोटेल में रुकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर बचाया गया डॉलर ग्राहक को कम कीमत के रूप में वापस मिलना चाहिए।
ये सोच तो गजब की है। तीसरा सिद्धांत?
तीसरा, कर्मचारियों के साथ साझेदारी। वो उन्हें कर्मचारी नहीं, एसोसिएट्स यानी सहयोगी कहते थे।
हाँ, ये सुना है।
उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग शुरू की, स्टॉक ओनरशिप प्लान लाए, ताकि एसोसिएट्स को लगे कि ये उनकी भी कंपनी है, वो उसकी सफलता में भागीदार हैं। उनका मानना था कि सबसे अच्छे आइडिया फ्रंटलाइन वालों से ही आते हैं,
जो रोज ग्राहकों से मिलते हैं।
हाँ। फिर चौथा, सर्वेंट लीडरशिप। वो मानते थे कि लीडर का काम अपने लोगों की सेवा करना है। वो खुद अपने छोटे प्लेन से देश भर के स्टोर्स का अचानक दौरा करते थे।
अच्छा, इसे वो कुछ कहते भी थे शायद।
हाँ, मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड या MBW।
जी।
वो सीधे एसोसिएट्स और ग्राहकों से बात करते थे, उनकी सुनते थे, टॉप पर बैठकर फैसले नहीं लेते थे।
ये बहुत जरूरी है।
और
भी हैं,
जैसे एक्शन पर जोर देना, हमेशा नई चीजें ट्राई करना, गलतियों से सीखना और तेजी से आगे बढ़ना, धारा के विपरीत तैरना, मतलब लीक से हटकर सोचना, जैसे छोटे शहरों में स्टोर खोलना, और आखिर में विनम्रता और आइडिया उधार लेना।
हाँ, ये आइडिया उधार लेने वाली बात तो कमाल की है।
बिल्कुल, सीखने में कोई ईगो नहीं, खुले तौर पर मानते थे कि दूसरों से सीखा है, चाहे वो कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो।
ये सिद्धांत सुनने में तो सरल लगते हैं, पर इन्हें सालों तक निभाना, खासकर जब कंपनी इतनी बड़ी हो जाए, ये मुश्किल रहा होगा। अगर उनके इतने लंबे करियर को देखें, तो क्या आप ऐसे तीन खास मोड़ या फैसले बता सकती हैं जिन्होंने वाकई सब कुछ बदल दिया? वो टर्निंग पॉइंट्स कौन से थे?
हाँ बिल्कुल, उनके सफर में कई अहम मोड़ आए, लेकिन तीन ऐसे थे जिन्होंने ना सिर्फ उनके बिजनेस की दिशा बदली, बल्कि शायद उनकी सोच को भी गहराई से बदला।
अच्छा, कौन से थे वो तीन?
पहला तो वही न्यूपोर्ट स्टोर का हाथ से निकल जाना।
हाँ, वो शुरुआती झटका।
हाँ, वो एक दर्दनाक सबक था, लेकिन उसने उन्हें हमेशा के लिए सतर्क बना दिया। छोटी छोटी बातों पर, खासकर कानूनी समझौतों पर ध्यान देना और अपनी प्रॉपर्टी का मालिक होने का महत्व सिखाया। इसी वजह से वॉलमार्ट ने बाद में ज्यादातर अपनी जमीन पर स्टोर बनाए।
सही कहा, ये नींव का पत्थर साबित हुआ एक तरह से। दूसरा मोड़?
दूसरा था छोटे शहरों को टारगेट करने का साहसिक फैसला। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था।
मास्टर स्ट्रोक क्यों?
क्योंकि उस समय सब बड़े रिटेलर शहरों के पीछे भाग रहे थे। सैम वॉल्टन ने उन छोटे कस्बों में मौका देखा जिन्हें सब नजरअंदाज कर रहे थे। एक्सपर्ट्स की सलाह के खिलाफ जाकर ये फैसला लेना जोखिम भरा था, पर इसी ने वॉलमार्ट को बिना किसी मुकाबले के तेजी से बढ़ने का मौका दिया। ये उनके धारा के विपरीत तैरने का सबसे बड़ा उदाहरण है।
जहां कोई नहीं जा रहा था, वहां वो गए। और तीसरा?
तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण था उनका ये समझना कि कम कीमत पर बेचने के लिए सिर्फ खरीदना बेचना काफी नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश करना होगा।
हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सैटेलाइट वाली बात।
बिल्कुल, अपना खुद का कुशल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना और फिर वो 80 के दशक में निजी सैटेलाइट सिस्टम में इन्वेस्ट करना, ये वो कदम थे जिन्होंने खेल ही बदल दिया।
कैसे?
इसने उन्हें लागत कम करने, इन्वेंट्री संभालने और सामान तेजी से पहुंचाने में ऐसी बढ़त दी जिसका मुकाबला करना बाकियों के लिए नामुमकिन था। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, ये उनकी सबसे कम कीमत वाली रणनीति को सचमुच बड़े पैमाने पर चलाने का इंजन थी।
समझ गया। तो ये तीन मोड़, एक शुरुआती असफलता से सीखना, एक हिम्मत भरा रणनीतिक चुनाव और भविष्य देखकर किया गया टेक्नोलॉजी में निवेश, ये वाकई उनकी कहानी को समेटते हैं। और ये कहानी सुनकर लगता है कि ये सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं है, इसमें हम सबके लिए गहरे मानवीय सबक भी हैं।
बिल्कुल है, ये कहानी बिजनेस की दुनिया से कहीं आगे जाती है। इसमें कई ऐसे सबक हैं जो आज भी किसी के लिए भी काम के हो सकते हैं।
जैसे कि क्या सबक मिलते हैं हमें?
पहला तो यही कि असफलता सीखने का पहला कदम है। न्यूपोर्ट वाला अनुभव यही दिखाता है, हार मान लेने के बजाय उससे सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ना।
सही बात है।
दूसरा, मेहनत और सादगी की ताकत। महामंदी में सीखे सबक उनकी सफलता की नींव बने। ये याद दिलाता है कि बुनियादी मूल्य कितने अहम हैं। तीसरा, स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना। सफलता अक्सर बनी बनाई लीक तोड़ने से मिलती है। एक्सपर्ट हमेशा सही नहीं होते, अपनी समझ पर भरोसा करना जरूरी है।
बिल्कुल।
चौथा, सरल सिद्धांतों का अनुशासन। फैंसी रणनीतियों के बजाय सरल ग्राहक केंद्रित उसूलों पर लगातार टिके रहना भी चमत्कार कर सकता है।
अनुशासन बहुत जरूरी है इसमें।
हाँ, फिर सीखने की विनम्रता, सफल होकर भी सीखते रहना। और नेतृत्व का मतलब सेवा करना। लीडर का काम अपने लोगों की मदद करना है।
सर्वेंट लीडरशिप।
हाँ, और एक और बात, संतुलन का महत्व। किताब में उनकी पत्नी हेलेन का जिक्र आता है। वो उन्हें जमीन से जोड़े रखती थीं, पारिवारिक मूल्यों की याद दिलाती थीं।
हाँ, ये भी जरूरी है। सफलता के साथ जीवन के बाकी पहलू भी अहम हैं।
बिल्कुल। तो ये सब मानवीय सबक हैं जो उनकी कहानी में छुपे हैं।
ये वाकई बहुत गहरे सबक हैं, बिजनेस से लेकर जिंदगी तक हर जगह लागू होते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए तीन सबसे अहम बातें निकालनी हो, तीन निचोड़ जो सैम वॉल्टन की जिंदगी और सोच का सार हो, तो वो क्या होंगी?
हाँ, ये मुश्किल चुनाव है, पर अगर तीन मुख्य सीखें चुननी हो तो मेरे हिसाब से ये होंगी।
बताइए।
पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। लोगों पर, खासकर अपनी टीम पर सच्चा भरोसा करना और उन्हें सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि असली भागीदार एसोसिएट्स मानकर सशक्त बनाना। ये उनमें गजब की लॉयल्टी और असाधारण नतीजे देने की क्षमता पैदा करता है। ये मानवीय जुड़ाव की ताकत है।
लोगों पर विश्वास। दूसरी,
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। बिजनेस में टिकाऊ बढ़त अक्सर उन बोरिंग लगने वाले कामों से आती हैं जिनमें ऑपरेशनल एक्सेलेंस हासिल की जाए, जैसे लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन और खर्चों पर निर्मम कंट्रोल रखा जाए। ये बढ़त सिर्फ चमक दमक वाले प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग से नहीं मिलती, बैकएंड की कुशलता ही फ्रंट एंड पर वैल्यू देना संभव बनाती है।
सही, ऑपरेशनल एक्सेलेंस। और तीसरी, आखिरी सीख।
तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। सच्ची और बड़ी सफलता अक्सर धारा के विपरीत तैरने में मिलती है, यानी पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाना, बनी बनाई सोच को चुनौती देना और वहां मौके तलाशना जहां दूसरे नहीं देख रहे। लेकिन ये हिम्मत सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि ग्राहक की जरूरतों की गहरी जमीनी समझ पर आधारित होनी चाहिए। ग्राहक को सबसे पहले रखना ही सही रास्ता दिखाता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों।
भावनात्मक, बौद्धिक और सार्वभौमिक, ये तीनों सीखें वाकई सैम वॉल्टन की कहानी और उनकी विरासत का एक बेहतरीन निचोड़ हैं। और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या आज के इस जटिल दौर में भी उनके ये सरल सिद्धांत उतने ही कारगर हो सकते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।